Iran Radio Podcast. दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। एक बार ट्रेन में सवार होते हुए महात्मा गांधी के एक चप्पल पैर से निकलकर प्लेटफॉर्म पर गिर गया। ट्रेन चल पड़ी और गांधी जी को उतरकर चप्पल उठाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने अपने दूसरे पैर का चप्पल निकालकर उसे इतनी जोर से फेंका कि वो पहले वाले चप्पल के पास जाकर गिरा। उनकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? गांधी जी मुस्कुराए और कहा, अब ये चप्पल किसी गरीब आदमी के काम आ सकते हैं। अगर मैं दूसरा चप्पल नहीं फेंकता तो वो ना मेरे काम का रहता और ना ही किसी और के काम आता। दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 30वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो हम बात कर रहे थे गांधी जी के चप्पल की। हिंदुस्तान में गोरों की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नमक पर टैक्स लगा दिया, जो उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इस कानून के खिलाफ लोगों में रोष था, लेकिन गांधी जी ने इस अवसर को अहिंसक संघर्ष या नमक सत्याग्रह में बदल दिया। उन्होंने इस कानून का विरोध करने के लिए समुद्र के तट पर जाकर नमक बनाया, ताकि नमक के लिए ब्रिटिश सरकार को टैक्स ना देना पड़े। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश राज के कानून को तोड़ा। गांधी जी ने डांडी मार्च के लिए अपने भरोसेमंद 78 साथियों का चयन किया था। 1930 में 12 मार्च को महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस डांडी यात्रा की शुरुआत हुई। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने के अंग्रेजी सरकार के फैसले के खिलाफ अहमदाबाद स्थित अपने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। इसके तहत समुद्र के किनारे बसे गांव डांडी तक 24 दिन की लंबी यात्रा की गई। यहां पहुंचकर गांधी जी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। ये एक अहिंसात्मक आंदोलन और पद यात्रा थी। हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में डांडी यात्रा को खास महत्व दिया जाता है। गांधी जी अपने साथियों के साथ जब शहरों और गांवों से होकर गुजरे तो बड़ी संख्या में लोग उनके इस मार्च में शामिल होते गए। वे जिस कस्बे और गांव से होकर गुजरे, लोगों का जन सैलाब उनसे जुड़ता गया। गांधी जी को समुद्र तट पर नमक तैयार करने में 2 महीने से अधिक का समय लगा, लेकिन उनके तट पर पहुंचने से बहुत पहले समुद्र तट पर काम करने वालों का शांत संघर्ष शुरू हो चुका था। लोगों ने न केवल नमक नहीं खरीदा, बल्कि अन्य अंग्रेजी सामान खरीदने से भी इनकार कर दिया। अहिंसक सविनय अवज्ञा के रूप में क्रांतिकारी लोग दुकानों के पास खड़े हो जाते थे और लोगों से अंग्रेजी सामान नहीं खरीदने का आग्रह करते थे। ब्रिटिश सरकार इस अहिंसक और शांत आंदोलन को बर्दाश्त न कर सकी। उसने अहिंसक सविनय अवज्ञा करने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद लोगों ने अपना अहिंसक संघर्ष जारी रखा। सिविल सेवकों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। लोगों ने बैंकों से पैसा उधार लेना और बैंकों में पैसा रखना बंद कर दिया। लोगों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों से बाहर निकाल लिया और स्थानीय अदालतें स्थापित की गईं, ताकि किसी को अंग्रेजी सरकार के दरबार में न जाना पड़े। 1921 के अंत में जब इंग्लैंड के युवराज भारत के दौरे पर कलकत्ता पहुंचे तो लोगों ने सार्वजनिक शोक की घोषणा कर दी और युवराज के स्वागत के लिए कोई नहीं गया। जब पुलिस ने इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया तो लगभग 30,000 लोग कलकत्ता जेल के सामने जमा हो गए और अपनी गिरफ्तारी देने पर जोर देने लगे। अंततः ब्रिटिश सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि उसने भारत के लोगों के अनुरोध पर ध्यान देने और उन्हें सरकारी परिषदों में भाग लेने देने का फैसला किया है। हालांकि बहुत से भारतीय जानते थे कि यह भी एक धोखा है, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अंग्रेजी सरकार अपनी मनमर्जी करती थी और राज्य परिषद को महत्व नहीं देती थी। लेकिन लोग अब पूरी तरह होशियार थे। उन्होंने इस स्थिति को भी संघर्ष के अवसर में बदल दिया। किसी ने भी परिषद की सदस्यता के लिए नामांकन नहीं किया तो लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। भारी जनाक्रोश के चलते गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। मौका देखते ही गांधी जी ने अपने साथियों से चरखा लाने को कहा। सूत कातने और कपड़ा बुनने का एक ऐसा उपकरण जो कभी हर भारतीय घर में पाया जाता था। भारतीयों ने इस चरखे का इस्तेमाल स्वदेशीकरण के प्रतीक के रूप में किया। हालांकि उस वक्त तक अंग्रेज भारतीय कपड़ा उद्योग को नष्ट कर चुके थे और अब शहरों और गांवों में सभी लोग अंग्रेजी कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। गांधी जी के एक दोस्त उनके लिए एक चरखा ढूंढ लाए। गांधी जी उसे घर ले गए और उन्होंने एक बूढ़ी महिला से अनुरोध किया कि वो उन्हें इस चरखे का इस्तेमाल करना सिखाए। कुछ समय बाद उन्होंने खादी की बुनाई शुरू कर दी। अपनी राजनीतिक गतिविधियों के अलावा वो प्रतिदिन 4 घंटे खादी की कताई और बुनाई के लिए समर्पित थे। कुछ समय बाद गांधी जी अपने हाथ से तैयार किए गए कपड़े पहनने में सक्षम हो गए। धीरे धीरे चरखों को एक बार फिर घर के कोनों से निकाला जाने लगा और खादी की बुनाई फिर से शुरू हो गई। अंग्रेज इसी बात से डरते थे। हालांकि खादी में ब्रिटिश कपड़ों जैसी कशिश नहीं थी, फिर भी इस कपड़े के ग्राहक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। गांधी जी ने अपने अनुयायियों को भारत में बुने हुए कपड़ों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन लोगों के लिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश करना चाहते थे एक शर्त रख दी कि उन्हें खादी का उपयोग करना होगा। खादी आंदोलन के शुरू होने के कुछ समय बाद ही लोगों का एक बड़ा समूह खादी पहनकर सड़कों पर निकलने लगा। एक तरह से खादी गांधी जी, उनके अनुयायियों और भारतीय आज़ादी के समर्थकों की वर्दी बन गई। कई ग्रामीणों और शहरवासियों को जो कुछ समय पहले तक बेरोजगार थे रोजगार मिल गया। गांधी जी ने खादी बुनकरों के एक संघ की स्थापना कर दी। 1928 में इस एसोसिएशन के पास 166 गोदाम और 245 स्टोर थे और सालाना 12,50,000 लीरे का कपड़ा बिकने लगा। एक दिन खादी का भव्य त्यौहार मनाया गया। उस दिन बंबई शहर के व्यापारियों ने अपनी दुकानों में मौजूद विदेशी कपड़ों को शहर के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा किया और कपड़ों के ढेर को आग के हवाले कर दिया। खादी भारत में इतनी लोकप्रिय हो गई कि जापान में कपड़ा निर्माता मशीनों से खादी जैसा कपड़ा बनाते थे और इसे भारतीय हाथ से बुने हुए कपड़ों के नाम से बेचते थे। 1929 में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का भारतीय लोगों का निर्णय उस बड़े आर्थिक संकट के साथ साथ शुरू हुआ जिसने पूरे अमेरिका और यूरोप को अपनी चपेट पर ले लिया था। इस संयोग से अंग्रेजों का भारतीयों के अहिंसक संघर्ष से डर बढ़ गया। लोगों को शांत करने के लिए उन्होंने एक बार फिर भारतीयों से आज़ादी का वादा किया, लेकिन उन्होंने इस वादे को पूरा करने के लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की। इस वजह से लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वायत्तता देने की जांच के लिए एक दल भेजा, लेकिन ये समूह जिस शहर में भी गया वहां उसे लोगों के विशाल जुलूसों का और विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस ने इन मार्चों में शामिल लोगों पर हमले किए, उन्हें पीटा, लेकिन गांधी जी ने लोगों को पुलिस के जवाब में कोई हिंसा न दिखाने का सुझाव दिया। लोगों ने अपने सिर और शरीर पर लाठियों के प्रहार सहे, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। हालांकि सभी भारतीय युवा सत्याग्रह या अहिंसक संघर्ष में विश्वास नहीं रखते थे। कुछ राज्यों में अंग्रेजों के अत्याचार के कारण वे हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गए। बंगाल में युवाओं के एक समूह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए एक संगठन की स्थापना भी की और पहले ही ऑपरेशन में एक अंग्रेज कर्नल को मार डाला। अंग्रेज़ों ने भारतीयों का गुस्सा ठंडा करने के लिए 1945 में अपनी संसद में एक नया भारतीय अधिनियम पारित किया। इस कानून के अनुसार भारत को 11 प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रत्येक प्रांत के लोग विधानसभा चुनावों में भाग ले सकते थे। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रांत का प्रबंधन करने के लिए मंत्रियों को चुनते हैं, लेकिन इन मंत्रियों को सेना के मामलों या विदेशियों के साथ संबंधों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। सेना की कमान और विदेशियों के साथ संबंध प्रांत के अंग्रेज गवर्नर के अधिकार में थे। ये गवर्नर जब चाहे मंत्रियों के निर्णयों को पलट सकता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कानून को स्वीकार नहीं किया। हालांकि गांधी जी ने भारतीयों का चुनाव में भाग लेने का आह्वान किया और प्रत्येक प्रांत की संसदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवारों का नाम पेश किया, जनता ने वोटिंग में भाग लिया। इस तरह भारत के अधिकांश प्रांतों की विधानसभाओं का गठन राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की उपस्थिति से किया गया। भारत की संसद तथा प्रांतों की सरकार के गठन को अभी अधिक समय भी नहीं बीता था कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का गठबंधन था, जो जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। युद्ध की शुरुआत के साथ ही भारत में ब्रिटिश वायसराय ने घोषणा कर दी कि प्रांतीय सरकारें युद्ध की स्थिति में अपना काम जारी नहीं रख सकती। भारत में ब्रिटिश वायसराय ने भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध की तरह दूसरे विश्व युद्ध में भी इंग्लैंड की मदद करने के लिए कहा, लेकिन भारतीय पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड के धोखे और संधि भंग करने की गलती को नहीं भूले थे, इसलिए वे इसके लिए तैयार न हुए। उन्होंने युद्ध में सहायता के लिए स्वाधीनता और स्वतंत्रता की शर्त रखी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर लोगों से सत्याग्रह का आह्वान किया। श्रमिकों ने काम बंद कर दिया और शहरों में एक बड़ा मार्च निकाला गया। यहां तक कि भारतीय सेना में भी, जो युद्ध के कारण अलर्ट पर थी, विरोध और विद्रोह शुरू करने की फुसफुसाहट होने लगी। इस स्थिति ने अंग्रेजों को 1857 की भारतीय जन क्रांति की याद दिला दी। हड़तालों, फैक्ट्रियों के बंद होने और युद्ध की परिस्थितियों में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि इंग्लैंड और उसके सहयोगियों ने दूसरे विश्व युद्ध को जीत लिया, लेकिन आज़ादी हासिल करने के लिए इंग्लैंड पर भारतीय जनता का दबाव कम न हुआ। 2 साल के दौरान भारत की जनता ने लगभग 3,400 हड़तालें की और इंग्लैंड को भारी और अभूतपूर्व नुकसान उठाना पड़ा। मार्च 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद के सदस्यों से कहा, भारत में स्थिति बदल गई है और हम पुराने तरीकों से समस्याओं को हल नहीं कर सकते। अगर हम पुरानी चालों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे तो हमारे सामने नई समस्याएं पैदा होंगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने दूसरे देशों का शोषण करने का नया तरीका खोज लिया, जिसे उन्होंने उपनिवेशवाद या नए उपनिवेशवाद का नाम दिया। अंग्रेज भी हमेशा के लिए भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते थे। उन्होंने आखिरी चाल के तौर पर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कलह की आग भड़का दी। कलकत्ता और भारत के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच हिंसा शुरू हो गई। मार्च 1947 में भारत में इंग्लैंड के अंतिम वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन भारत को शांत करने और आंतरिक संघर्षों को समाप्त करने के प्रस्ताव के साथ भारत आए। उनका प्रस्ताव भारत के विभाजन के अलावा कुछ नहीं था। सांप्रदायिक दंगे इतने भीषण थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य देश के विभाजन के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। कांग्रेस नेताओं के बीच हुए मतदान में 29 लोगों ने भारत के विभाजन के पक्ष में और केवल 15 लोगों ने इसके विरोध में मत दिया। गांधी जी विभाजन के विरोध में मतदान करने वालों में थे। इस प्रकार भारत 2 देशों में बढ़ गया, भारत और पाकिस्तान। 4 महीने बाद ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। वर्षों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। शहरों में दंगे और फसाद हो रहे थे और हर तरफ लोग खून में लथपथ थे। गांधी जी ने लोगों को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन अंग्रेज़ों की भड़काई हुई आग में लोग इतना बहरे और अंधे हो चुके थे कि कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। इस हिंसा के विरोध के संकेत के रूप में उन्होंने उपवास रखने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि जब तक गृह युद्ध और रक्तपात समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो खाने और पानी को नहीं छुएंगे। उनका कहना था कि वो इसके लिए अपने प्राण तक त्याग देंगे। भारत की राजधानी दिल्ली में हिंदुओं की एक बहुत बड़ी सभा हुई। हिंदू गांधी जी से वादा करने आए थे कि वे मुसलमानों पर दोबारा हमले नहीं करेंगे। जिन मस्जिदों को उन्होंने नष्ट किया था वे उन्हें अपने पैसों से दोबारा बनाएंगे और मुसलमानों के प्रति अपने दिलों को नफरत से पाक करेंगे। इस वादे के बाद गांधी जी ने अपना उपवास समाप्त करने की सहमति जता दी। लेकिन सभी हिंदू गांधी जी के इन संस्कारों को स्वीकार नहीं करते थे। उनमें से कई इस बात से नाराज थे कि गांधी जी ने क्यों हिंदुओं को मुसलमानों पर हमला करने से रोका। ऐसे ही एक चरमपंथी हिंदू ने 1948 के जनवरी महीने के आखिरी तारीख को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान गांधी जी को बहुत करीब से गोली मार दी। भारतीय क्रांति के नेता अपने देश की आज़ादी के 5 महीने बाद अंग्रेजों की पुरानी चाल फूट डालो और राज करो का शिकार हो गए।